निर्देशिका सुंदर स्वाध्याय और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए भाव भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त होता रहे और शीघ्र ही सम्यक दर्शन के द्वारा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होकर अपना मोक्ष मार्ग सुलभ हो जाए एवं मोक्ष की प्राप्ति हो जावे। इस भावना के साथ अब खोलिएगा प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ में पेज नंबर 41, 41। सराग सम्यक्त की बात चल रही है। आपने खूब अच्छे से जाना कि औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक के समय निसर्गज अधिगमज के वेद से सम्यक दर्शन के दो भेद हैं। सराग और वीतराग की अपेक्षा सम्यक दर्शन के दो भेद निश्चय और व्यवहार, व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा भी यही सराग और वीतराग सम्यक दर्शन दो प्रकार का कहा गया एवं आपने सम्यक दर्शन के 10 भेद भी आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी के द्वारा जाने हैं जो आत्मानुशासन के अंदर बहुत सुंदर रूप में बताए गए हैं। आज हम चलते हैं सराग सम्यक्त की ओर। कषाय प्रावृत ग्रंथ में श्री गुणधर आचार्य ने तो दर्शन मोह के उपशम आदि से होने वाले सम्यक्त का लक्षण व्यवहार प्रधान किया ही है, यानी कि जो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी चतुष्क इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। इस बात को कषाय प्रावृत के कर्ता आचार्य श्री गुणधर स्वामी ने कहा है, उसी गाथा को यहाँ उद्धृत किया गया है। सम्मा इट्ठी जीवो सम्मा इट्ठी पवयणमनियम साधु इट्ठम
पवयणमनियम साधु इट्ठम
सद्दाहदियसभावम्
सद्दाहदियसभावम्
अजानमानो गुरुर्योगा।
अजानमानो गुरुर्योगा।
पिछले अध्याय के अंदर भी आपने इस गाथा को पढ़ा है। थोड़े थोड़े से परिवर्तन के साथ ये गाथा अनेक आचार्यों ने लिया है। सम्यक दर्शन के लक्षण को बताने वाली ये गाथा, इसका मतलब है कि बहुत ही प्रामाणिक गाथा है। इसके माध्यम से कहा कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ देव के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो नियम से श्रद्धान करता ही है, किंतु कदाचित अज्ञानवश सद्भूत अर्थ को स्वयं नहीं जानता हुआ गुरु के नियोग से असद्भूत अर्थ का भी श्रद्धान करता है। असद्भूत का मतलब कोई चीज गलत है तो भी गुरु के निमित्त से स्वयं को ज्यादा ज्ञान नहीं है, और गुरु के निमित्त से यदि असद्भूत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है तो वो सम्यक दृष्टि माना जाता है। इस गाथा के माध्यम से व्यवहार सम्यक दृष्टि की परिभाषा, व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई है। क्षायिक सम्यक्त को वीतराग सम्यक्त कहने की अपेक्षा यह लक्षण वीतराग सम्यक दृष्टि का भी हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ पंचम और छठे गुण स्थान में ये लक्षण संभव ही है। और आचार्यों की तो बात ही क्या, अकलंक देव आदि ने क्षायिक सम्यक्त को वीतराग कहा है सो ही आगे दिया है। अब वीतराग सम्यक्त का मतलब, क्षायिक सम्यक्त का मतलब ये है जिसे वीतराग कहा है, तो इन्हीं 7 प्रकृतियों के पूर्णतया क्षय होने से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वह क्षायिक सम्यक दर्शन है। तो उपशम से प्रकट हुआ औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय से प्रकट हुआ क्षायिक सम्यक दर्शन, इसको भी लक्षण की अपेक्षा से व्यवहार ही कह दिया है, सराग सम्यक दर्शन ही कह दिया है, लेकिन क्षायिक सम्यक्त को वीतराग सम्यक्त कहा है। और ये चतुर्थ गुण स्थान में भी होता है, जैसे राजा श्रेणिक ने चतुर्थ गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त किया भगवान महावीर के समो शरण में, ऐसे ही चतुर्थ पंचम और छठे गुण स्थान में भी ये लक्षण संभव है। माने कि क्षय सम्यक दर्शन को लेकर के इन गुण स्थानों तक भी जीव जाते हैं और आगे छपक श्रेणी पर जब चढ़ते हैं तो क्षय सम्यक दर्शन के द्वारा ही रहता है। अकलंक देव आदि सभी आचार्यों ने क्षय सम्यक को वीतराग सम्यक कहा, यानी इसलिए यहाँ विशेष कहा कि चतुर्थ पंचम गुण स्थान सराग अवस्था में गृहस्थों के देश संयमी के होता है, तो उनके पास ये सम्यक दर्शन जब है तो इसको वीतराग क्यों कहा? इसलिए कहा कि इसमें सात प्रकृतियों के क्षय से ये क्षायिक सम्यक होता है। व्यवहारिकता के नाते वह केवल अविरत सम्यक दृष्टि या देश संयमी है, लेकिन सात प्रकृतियों का क्षय हो जाने के कारण दोबारा उदय में नहीं आएंगी, इसलिए इस अपेक्षा से इस सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। वह जीव वीतरागी नहीं है, लेकिन उसका सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक के नाम से जाना जाता है। साक्षात गौतम स्वामी जो कि विपुल मति मनापर्य ज्ञान के धारी थे, सात रिद्धियों से समन्वित थे, तद्भव मोक्षगामी थे, 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के चरण सानिध्य में रहकर उनकी दिव्य अमृतमयी दिव्य ध्वनि को जिन्होंने श्रवण किया था और द्वादशांग रूप में श्रुति की रचना की थी, ऐसे श्री गौतम गणधर मुनियों के पाक्षिक प्रतिक्रमण में दर्शनाचार का लक्षण करते हुए कहते हैं। देखो कहां कहां से पूज्य माता जी इन वचनों को लेकर के आई, यानी कि ये आचार्य तो पंचम काल के थे, लेकिन गौतम स्वामी जिन्होंने चतुर्थ काल में भगवान महावीर के समोसरण में सभी भव्यात्माओं को द्वादशांग में निबद्ध करके दिव्य ध्वनि का पान कराते थे, उन्होंने मुनियों के लिए श्रावकों के लिए जो प्रतिक्रमण 11 प्रतिमाएं इनका वर्णन किया, तो उसमें पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंदर जो हम लोग प्रत्येक चतुर्दशी या अमावस को या पूर्णिमा को पढ़ते हैं, हर 15 दिन के अंदर जो प्रतिक्रमण पढ़ा जाता है मुनि और आरिकाओं के द्वारा, उसमें दर्शनाचार का लक्षण यानी सम्यक दर्शन को ही दर्शनाचार कहा है, तो दर्शनाचार का लक्षण करते हुए कहा है, दंशना यारो अट्ठ भी हो निसंकीर्ण कंखिया निविधि गिंचा अमूढ़ दीठिया
निविधि गिंचा अमूढ़ दीठिया
गुहठिधि करणम
गुहठिधि करणम
वत्सल्य पहावणा चेदी
वत्सल्य पहावणा चेदी
अट्ठवियो परिहाविदो संकाय कंखाय विधि गिंचाय अन्न दिठि प्रसंसन दाय पर पाखंड प्रसंसन दाय प्रणायदन सेवन दाय अवच्छल दाय अपहावन दाय तस्य मिच्छा में दुक्कड़म। उसमें अपने सारे पापों का मिच्छा में दुक्कड़म के माध्यम से प्रायश्चित करते हुए प्रतिक्रमण करते हुए इस बात को कहा है कि जो दर्शनाचार 8 प्रकार का है, निसंकेत निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों से समन्वित दर्शनाचार 8 प्रकार का कहा जाता है, जिसके माध्यम से निरतिचार शुद्ध सम्यक दर्शन का परिपालन होता है। तो दर्शनाचार के अंदर पाक्षिक प्रतिक्रमण में क्या कहा कि हे भगवान मैंने शंका से कांक्षा से यानी कि इन 8 अंगों को दोष रूप में परिवर्तित किया कि इन 8 दोषों के माध्यम से जो 8 प्रकार के दर्शनाचार में विराजमान की है, कोई शंका की है, किसी प्रकार की आकांक्षा की है, आगामी भोगों का निदान किया है, विचिकित्सा घृणा की ग्लानी की है, निंदा की है, किसी गुरु के लिए अन्य दृष्टि की प्रशंसा की है, पर पाखंड की पर मत की प्रशंसा की हो, अनायतन का सेवन किया हो यानी सच्चे देव सात गुरुओं के प्रति अश्रद्धान करके और अनायतनों की सेवा की है, अवात्सल्य किसी सहधर्मी के प्रति यदि कोई अपमान बना हो उसके प्रति वात्सल्य भावना किया हो, अप्रभावना मेरे द्वारा किसी प्रकार से जिन धर्म की सच्ची प्रभावना नहीं हुई हो, तो इस प्रकार से दर्शनाचार कि विराधना जो मेरे द्वारा हुई है वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, माने कि मेरा ये भगवान मैं उसके लिए प्रायश्चित करता हूँ और मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो जाए। यानी कई दोष ऐसे होते हैं कि जो एकदम मन से और निश्चल भाव से भगवान के सामने, गुरु के सामने अपनी गलती को महसूस करते हुए उसके लिए पश्चाताप कर दिया जाता है, उतने मात्र से वह पाप मिथ्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे कमरे के अंदर धूल होती है, कचरा होता है, तो उसकी सफाई के लिए झाड़ू लगाते हैं। इसी प्रकार से प्रतिक्रमण के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से अपने मन के अंदर जो पापों का कचरा, व्यसनों का कचरा या कषायों का कचरा होता है, धूल होती है, उसको मिच्छा में दुक्कड़म करते हैं। यही प्रतिक्रमण है। रोज कोई प्रायश्चित नहीं होता है, कहना ही, अपनी गलती को एहसास करना ही ये प्रायश्चित है और इसी का नाम है प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण के अंदर ये तो एक छोटी सी बात कही है कि दर्शनाचार के अंदर मेरे द्वारा कोई दोष लगा हो या सम्यक दर्शन की विराधना हुई हो तो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जावे। इसका मिच्छा में दुक्कड़म का मतलब है सॉरी प्लीज, जैसे कहते हैं ना किसी से कोई गलती हो गई या धक्का लग गया तो उसको कहते हैं सॉरी। अगर सॉरी नहीं कहते तो लगता है उद्दंड है, और सॉरी कह दिया इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ महसूस हुआ है अपनी गलती। ऐसी गलती को महसूस करके और भगवान के सामने अपनी उद्दंडता का पश्चाताप करना, प्रायश्चित लेना, यही प्रतिक्रमण कहलाता है। दर्शनाचार के विषय में ये इसलिए यहाँ बताया कि गौतम गणधर स्वामी ने भी देखो मुनियों को भी ये 8 अंगों से समन्वित सम्यक दर्शन के पालन की बात जो कही, ये व्यवहार प्रधान है। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? वो तो आत्मा में लीन हो जाऊं, बाहर की कोई सुध-बुध नहीं रहती। वह वितराग सम्यक दर्शन है, उन मुनियों के लिए भी कहा कि अगर शुद्ध दर्शनाचार का पालन करते हैं वे व्यवहार सम्यक दृष्टि हैं। इस प्रकार से श्री गौतम स्वामी ने मुनियों तक के लिए ये व्यवहार प्रधान सम्यक तो बतलाया है। अब अध्यात्म योगी श्री कुंद कुंद देव के वचनों में देखिए, यानी कि ये चैप्टर ऐसा है आपको बड़े से बड़े आचार्यों से लेकर के और आधुनिक तक के आचार्य शांति सागर महाराज तक की श्रृंखला को बतलाने का इसमें प्रयास किया गया है। क्या गुणधर आचार्य जो सबसे प्राचीन और इस युग के प्रथम ग्रंथ को, कषाय प्रावृत सूत्र को रचने वाले आचार्य हैं, उन्होंने भी किस प्रकार से व्यवहार सम्यक दर्शन के माध्यम से आत्मा को पवित्र करने की बात कही है, और गौतम गणधर स्वामी की भी बात बता दी। पुनः अब कुंद कुंद स्वामी की बात को कहेंगे कि समय सार आदि में या अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में किस प्रकार से उन्होंने सम्यक दर्शन की बात को कही है। आप सुनते रहिए, जानते रहिए और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करते रहिए। जहां भी सम्यक दर्शन की चर्चा चले, आपको कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसका उदाहरण इस प्रवचन निर्देशिका में ना आया हो। इसलिए जब भी सम्यक दर्शन की चर्चा करें, आप प्रवचन निर्देश का ग्रंथ को साथ में रखें, और हर मनुष्य के लिए, हर जैन कुल में जन्मे मानव को यदि आप सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने में निमित्त बन सके, कारण बन सके, तो समझो उसका तो मोक्ष मार्ग आगे साकार हो ही जाएगा। लेकिन आपका मोक्ष मार्ग बहुत जल्दी साकार होकर के और मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा, ताकि हम आने वाले समय में शीघ्र ही मोक्षगामी बन सकें। तो यही आज के स्वाध्याय का सार जानना और आगे आचार्य कुंद कुंद देव के शब्दों में आपको सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई जाएगी।